आरव आयु और दोनों बच्चों के साथ ज्ञान जी के फार्म हाउस पर आया था। तारा जी और जय जी ने जब आयु को देखा तो उनके मन में फिर से कड़वी यादें ताज़ा हो गईं। उन्होंने आयु के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया और उसे वहां से जाने के लिए कहा। तारा जी ने बच्चों के सामने सीधे सीधे नहीं कहा, लेकिन उनकी बातों से साफ था कि वो आज भी आयु को अनु का कातिल मानती हैं। तारा जी की गुस्से में तबियत खराब हो रही थी, इसलिए आयु वहां से जाने लगी। आरव अभी तक दोनों बच्चों के साथ वहां पर खड़ा था, जबकि आयु रोते हुए फार्म हाउस से निकल चुकी थी। आयु को रोता हुआ देखकर दोनों बच्चे गुस्से में तारा जी की तरफ देख रहे थे। ज्ञान जी को देखते ही आरिषा उनके पास चली गई। तारा ने आरिषा की तरफ देखकर पूछा, मैं बहुत खुश हूं कि हमें हमारी बच्ची जिंदा और सही सलामत मिल गई। बोलते हुए वो आरिषा को गोद में उठाने लगी। तभी आरव बीच में आया और ज्ञान जी से आरिषा को ले लिया। आरव ने तारा जी की तरफ सर्द निगाहों से देखते हुए कहा, अगर मेरे बच्चों की माँ से ही आपका कोई रिश्ता नहीं है तो इनसे भी रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं है मिसेज ओबेरॉय। जिस दिन आप सब कुछ भूलकर मेरी वाइफ को माफ़ कर देंगी और आकर अपने किए की उससे सॉरी मांगेंगी, उस दिन मैं हक से आपको दोनों बच्चों को प्यार करने दूंगा। आरव ने दोनों बच्चों को लिया और वहां से जाने लगा। उसे जाता देखकर सिमरन ने तारा से कहा, आपको बच्चों के सामने आयु से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। आपने देखा ना, दोनों बच्चे आपको किस तरह से देख रहे थे। वो छोटे हैं और इन सब से उनके मन पर गलत असर पड़ेगा। सिमरन बिल्कुल ठीक कह रही है मॉम, रुद्र ने सिमरन का साथ देते हुए कहा। आप ही हमें समझाती हैं ना कि रेहान के सामने झगड़ा ना करे या तेज आवाज में बात भी करने से मना करती हैं, तो फिर अब आपको क्या हो गया? इतने टाइम बाद आरिषा इस घर में आई थी और कितनी खुशी की बात थी। याद है आयु जब प्रेग्नेंट थी तो उसने इस बारे में सबसे पहले आपको बताया था, आरव से भी पहले। आप आयु से नफरत कैसे कर सकती हैं? वो इतनी उम्मीदें लेकर यहाँ आई थी और आपने एक बार फिर उसकी उम्मीदों को तोड़ दिया। बेटी है वो आपकी, रुद्र तारा को समझाने की कोशिश कर रहा था। तारा ने उसकी बातों को पूरी तरह अनसुना किया और वहां से अंदर चली गई। उसे जाता देखकर ज्ञान जी ने रुद्र से कहा, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। इसकी इसी जिद की वजह से इसकी और आयु के बीच में दूरियां रहती हैं। मेरी गलती है, मुझे आयु को यहाँ लेकर ही नहीं आना चाहिए था। तो क्या आयु आपके साथ रह रही थी? आपने इस बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? जय जी ने गुस्से से पूछा। ज्ञान जी ने उनकी तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, क्योंकि मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। वो तो हमेशा से मेरे साथ ही रहती थी और मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। उसका पूरा हक बनता है मेरे पास आने का। वो क्या है ना कि बचपन में भी उसके माँ बाप ने उसे अकेला छोड़ दिया था और जब जरूरत पड़ी थी तब भी। ठीक है, तो फिर उसी से रिश्ता रखिए, हमसे रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है, जय जी ने गुस्से में जवाब दिया और तारा के पीछे अंदर चले गए। ज्ञान जी भी काफी गुस्सा हो गए थे। जय जी के इस तरह बात करने के बाद अब उन्हें एक मिनट भी यहाँ नहीं रहना था, इसलिए वो अपने कमरे में जाकर पैकिंग करने लगे। वहीं सबके जाने के बाद रुद्र और सिमरन ने एक दूसरे की तरफ देखा। पूरी फैमिली का एक होने का बहुत अच्छा मौका था, लेकिन तारा जी और जय जी के गुस्से की वजह से सब आज फिर से अलग अलग हो गए थे। वहीं आरव दोनों बच्चों के साथ बाहर पहुंचा तो उसने देखा आयु गाड़ी की बैक सीट पर बैठे रो रही थी। दोनों बच्चे आयु के साथ बैक सीट पर आ गए, जबकि आरव ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। उसका चेहरा सामने की तरफ था और वो शीशे के जरिए आयु को देख रहा था। आयु ने रोते हुए गुस्से से आरव की तरफ देखकर कहा, अब सुकून मिल गया ना तुम्हें सबके सामने मेरी इंसल्ट करवाकर? मुझे पता था वो यही कहेंगे, तभी मैं उनके सामने नहीं जा रही थी, लेकिन तुम्हें मुझे परेशान किए बिना चैन नहीं मिलता ना, इसलिए तुमने ये सब किया आरव। अपनी बात कहकर आयु ने अपना सिर घुटनों पर रखा और फिर से रोने लगी। आरिषा ने आयु को चुप करवाते हुए कहा, प्लीज मॉम रोना बंद कीजिए, वो आंटी बहुत बुरी हैं, हम उनसे बात नहीं करेंगे और ना ही कभी यहाँ पर आएंगे। हाँ मॉम, हम नानी से नहीं मिलेंगे क्योंकि उन्होंने आपको रुलाया, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगा, आर्य ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से आयु को सहलाते हुए कहा। अब रोना बंद भी करो आयु, बच्चों के सामने बच्चों की तरह रो रही हो तुम, आरव ने आइस रोल करके कहा। आरिषा ने आरव की तरफ तिरछी निगाहों से देखकर कहा, सब आपकी वजह से हुआ है डैड, जब मॉम आपको मना कर रही थी फिर भी आप हमें लेकर यहाँ पर क्यों आए, आप बहुत बुरे हो। आरिषा की बात सुनकर आरव ने पीछे की तरफ देखा तो आर्या ने भी उसी के लहजे में कहा, यस डैड, आप जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हो जिसकी वजह से सबको प्रॉब्लम होती है। बहुत बार आपने मेरे प्रोजेक्ट में गलत तरीके से हेल्प करने की वजह से मेरी टीचर ने भी मुझे डांटा और आज मॉम को भी डांट पड़ी। आर्य और आरिषा आरव को भला बुरा कह रहे थे। आयु ने आरव की तरफ देखा और दोनों बच्चों को अपने गले से लगाकर कहा, हाँ सही कहा, हर बार गड़बड़ उसकी वजह से ही होती है, तुम हमें होटल लेकर चलो और हमें तुमसे बात नहीं करनी है। हद है यार, मैंने तो कुछ किया भी नहीं और सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो, आरव ने कंधे उचका कर कहा। मुझसे तो सारा दिन लड़ती रहती हो और अपनी मॉम के सामने बिल्कुल चुपचाप खड़ी उनकी बातें सुन रही थी, अरे उन्हें कुछ कह नहीं सकती थी क्या? गाड़ी चलाइए डैड, हमें आपसे बात नहीं करनी है, आरिषा ने सख्त आवाज में कहा। आरव ने देखा वो तीनों उससे मुंह फेर कर बैठे थे तो मजबूरन आरव ने अपना चेहरा आगे की तरफ किया और गाड़ी स्टार्ट कर ली। होटल पहुंचते ही आरव को लगा आयु और बच्चे उससे बात करेंगे, लेकिन वहां आते ही आयु जल्दी से गाड़ी से उतरी और दोनों बच्चों को अपने साथ ले लिया। वो दोनों बच्चों के साथ आरव के बिना ही ऊपर जा रही थी। अजीब मुसीबत है यार, पता नहीं कौन सी घड़ी में मैंने इसे इसके घर ले जाने की बात कह दी थी, और ये दोनों बच्चे ये कुछ ज्यादा ही सपोर्ट नहीं कर रहे से। इसके अकेले के थोड़ी ना है, मैंने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है, आरव ने पैर पटकते हुए कहा और उनके पीछे जाने लगा। आयु बहुत मुश्किल से उससे ठीक से बात करने लगी थी और आज उसकी हरकत की वजह से वो फिर से नाराज हो गई थी। आरव आयु को ओबरॉयस के फार्म हाउस लेकर गया था। वहां उसने सोचा था कि इतने सालों बाद आयु और आरिशा को देखने के बाद ताराजी और जय जी का गुस्सा पिघल जाएगा, लेकिन आयु को देखते ही वो फिर से गुस्सा हो गई थी। वहां उन्होंने आयु को काफी कुछ कहा, जिसके बाद से आयु आरव से नाराज हो गई। आरव आयु और दोनों बच्चों को लेकर होटल पहुंच चुका था। वहां आते ही आयु दोनों बच्चों को लेकर ऊपर अपने फ्लोर पर चली गई, जबकि आरव उनके पीछे पीछे आ रहा था। लिफ्ट बंद होने वाली थी तभी आरव दौड़कर आया और जबरदस्ती अंदर घुस गया। उसकी इस हरकत पर वो तीनों उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। आरव ने उन तीनों की तरफ देखकर कहा, अब इतना भी अजीब रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से तुम तीनों मुंह बनाकर मुझे देख रहे हो। ठीक है, कभी कभार इंसान से गलतियां हो जाती हैं, और पता नहीं कुछ इंसानों का कभी कभार हमेशा क्यों होता है, आयु ने सिर हिलाकर कहा। आरव आयु के बिल्कुल पास आ गया और उसकी तरफ देखकर धीरे से बड़बड़ाकर कहा, एक्सक्यूज मी, अगर हम दोनों की गलतियां लिखने बैठे तो लिस्ट तुम्हारी वाली लंबी निकलेगी। तुम बच्चों के दम पर कुछ ज्यादा ही हवा में नहीं उड़ रही? हाँ तो तुम भी उड़ो ना, तुम्हें किसने रोका है मिस्टर खुराना, आयु ने मुस्कुराते हुए कहा।
हाँ, जितना उड़ना है उड़ लो, ऊपर चलो, दोनों बच्चों के सोने के बाद तुम्हें बताऊंगा, आरव ने जवाब दिया। उसने धीरे से आयु के हाथ से अपना हाथ इंटरवीन किया। आयु ने उसकी तरफ घूर कर देखा और उससे अपना हाथ अलग करने के लिए कहा, लेकिन आरव ने ना में सिर हिलाकर आयु का हाथ और भी कसके थाम लिया था। कुछ ही मिनटों में लिफ्ट रुक चुकी थी। फ्लोर पर आते ही आयु ने झटके से आरव का हाथ अपने हाथ से अलग कर लिया था और दोनों बच्चों के साथ अपने स्वीट में जाने लगी। जैसे ही आरव उनके पीछे आया, आयु ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। आरव ने चिल्लाकर कहा, आई स्वेयर मिसेस खुराना, तुम इसके लिए पछताने वाली हो। आयु ने अंदर से कोई जवाब नहीं दिया तो आरव वापस अपने स्वीट में आ गया था। वहां आते ही उसने अपना मोबाइल चेक किया तो माहिरा के काफी सारे कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे। आरव ने उसे तुरंत कॉल बैक किया। माहिरा ने कॉल रिसीव करते ही जल्दी से कहा, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें बताया था कि हम एक प्रोजेक्ट में खान के साथ कोलैब करने वाले हैं और तुम गायब हो। दादी से पता चला कि तुम देहरादून गए हुए हो। देखो, बच्चे बाहर घूमने की जिद करते हैं, लेकिन इसके चलते हम अपने काम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। तो मुझे बताओ वापस कब आ रहे हो, या मैं वहां आ जाऊं? नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं ही आ जाऊंगा एक दो दिनों में, आरव ने झट से जवाब दिया। माहिरा आगे कुछ कहती उससे पहले आरव ने कॉल कट कर दिया था। उसके इस हरकत पर माहिरा को गुस्सा भी बहुत आ रहा था। माहिरा कुछ कहती उससे पहले सामने से नाहर लूथरा की आवाज आई, आज भी उसने तुम्हारी पूरी बात नहीं सुनी ना? ऊपर से तुम एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो तुमसे शादी कर लेगा? उसकी पत्नी को गए हुए 3.5 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो इस बारे में बात तक नहीं करता है। अब तक नहीं करता था, लेकिन अब करेगा। एक बार उसे वापस आने दीजिए डैड, इस बार शादी के लिए हाँ कहनी होगी, माहिरा ने ईविल स्माइल करते हुए कहा। उसकी स्माइल देखकर मिस्टर लूथरा समझ चुके थे कि जरूर माहिरा के दिमाग में कुछ पक रहा है। मिस्टर लूथरा ने तुरंत पूछा, कुछ प्लान किया है तुमने उसके अगेंस्ट? पिछली बार की तरह कोई बेवकूफी मत करना, किस्मत अच्छी थी जो एक बच्चा बच गया। हर बार ऐसा नहीं होने वाला कि तुम उसके खिलाफ कुछ प्लान करो और उसे पता भी ना चले। नहीं पता चलेगा डैड, कभी भी पता नहीं चलेगा, आप बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। 2 दिन, बस 2 दिन बाद आरव वापस आ जाएगा और वो खुद सामने से मुझे शादी के लिए हाँ कहेगा, माहिरा ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा और फिर वहां से चली गई। माहिरा जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रही थी उससे एक बात तो साफ थी कि उसने सचमुच कोई सॉलिड प्लान कर रखा था और वो इस बारे में अपने डैड तक को नहीं बता रही थी। मिस्टर लूथरा के पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हेलो रीडर्स, अपनी न्यू स्टोरी का प्रोमो शेयर कर रही हूँ, पढ़कर लिंक पर क्लिक करना, कहानी खुल जाएगी। फिर भी ना मिले तो हिज डॉल के नाम से सर्च करना, मिल जाएगी। इस बार कुछ डिफरेंट ट्राई किया है डार्क रोमांस में। कहानी दूसरी आईडी पर है तो राइटर का नाम ब्लू सनशाइन आएगा। लिंक, हैव अ लुक। कमरे के बीच एक बड़ा सा बेड था। बेड पर सफेद बेडशीट थी, उस पर लाल और सफेद गुलाब बिखरे थे। बेड के बीचों बीच डार्क मैरून जोड़े में एक लड़की बैठी थी। उसकी गहरी काली आंखों में डर और दर्द दोनों थे। डर से सफेद चेहरा पीला पड़ गया था। वो दिखने में बहुत खूबसूरत और मासूम लग रही थी। सांचे में ढला दूध सा गोरा शरीर, परफेक्ट हाइट और खूबसूरत ओवल चेहरा, बिल्कुल किसी मॉडल की तरह लग रही थी। ये ईशानी थी जो लगभग 21 साल की थी। एक ही दिन में अचानक ईशानी की दुनिया बदल गई जब अचानक एक शख्स उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया और बंदूक की नोक पर शादी कर ली। ये कोई एकतरफा प्यार का मामला नहीं था, थी तो बस बेइंतहा नफरत। जहां शादी की पहली रात सबके लिए खास होती है, वहीं वो डर से कांप रही थी। तभी कमरे में किसी के आने की आहट हुई। उसी के साथ ईशानी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने डर से बेडशीट को पकड़ लिया। कुछ ही पलों में उसके सामने एक लड़का खड़ा था। उसने मैरून गोल्डन शेरवानी पहनी थी। उम्र लगभग 27 साल, 6 फीट 2 इंच हाइट, गोरा रंग, मस्कुलर फिट बॉडी और हेजल ग्रीन आईज। वो नफरत से ईशानी को देख रहा था। ये रुद्राक्ष खुराना था, ईशानी ने अब तक जिसे सिर्फ न्यूज चैनल्स में ही देखा था। रुद्राक्ष ईशानी के बिल्कुल पास आकर बैठ गया। वो डर के पीछे खिसकने लगी। अच्छा, अब तुम्हें डर लग रहा है, पहले क्यों नहीं सोचा कि आग से खेलने जा रही हो, रुद्राक्ष ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा। ईशानी की आंखों में कैद आंसू बाहर निकल गए। प्लीज मुझे जाने दो, ईशानी ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए और रोने लगी। रुद्राक्ष ने उसके हाथ पकड़े और उसे अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। वो उसके इतने पास थी कि उन दोनों के नाक एक दूसरे से टच हो रहे थे। बिल्कुल नहीं, रुद्राक्ष खुराना माफ करने में नहीं तड़पाने में यकीन रखता है। फिर तुमने तो रुद्राक्ष खुराना ही दिल पर वार किया है वाइफी, अब गेम मेरी तरफ से शुरू होगा। रुद्राक्ष के चेहरे पर सस्पिशियस स्माइल दी। ईशानी तो जानती तक नहीं थी कि आखिर उसकी गलती क्या है। ईशानी कुछ पूछ पाती उससे पहले रुद्राक्ष कोल्ड वॉइस में बोला, कौन कहता है लड़कों को गुड़िया खेलने का शौक नहीं होता, आज से तुम मेरी गुड़िया हो और मैं तुमसे जी भर कर खेलूंगा वाइफी। रुद्राक्ष ने उसी पल ईशानी को पकड़ लिया और काफी वाइल्ड तरीके से उसके होठों पर किस करने लगा। ईशानी उससे दूर होने के लिए हाथ पैर चला रही थी, पर सब वेस्ट था। रुद्राक्ष ने उसे बेड पर गिरा दिया। वो उसके ऊपर था, उसने एक हाथ से ईशानी को काबू कर रहा था और उसका दूसरा हाथ उसकी पीठ पर चल रहा था। ईशानी की सांस फूलने लगी, फिर भी रुद्राक्ष ने उसे नहीं छोड़ा। उसे किस करते टाइम रुद्राक्ष के माथे पर उसकी ज्वेलरी लगी तो वो तुरंत उससे दूर हो गया। तुम ये सब निकाल नहीं सकती थी क्या, रुद्राक्ष चिढ़कर बोला और ईशानी का हाथ पकड़कर उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने ले गया। वो खुद अपने हाथों से उसकी हर एक ज्वेलरी निकालकर फेंक रहा था। ईशानी को इन सब में बहुत तकलीफ हो रही थी और वो रोए जा रही थी। सारी ज्वेलरी निकालने के बाद रुद्राक्ष ने ईशानी के सिर पर लगा दुपट्टा निकालकर फेंक दिया। उसके कंधे पर एक और दुपट्टा था, वो भी उसने हटा दिया। ईशानी ने तुरंत अपनी नजरें घुमा ली। अच्छा, तो अब तुम्हें शर्म आ रही है, मुझे लगा तुम जैसी लड़कियों के लिए ये सब चीजें नॉर्मल होगी, रुद्राक्ष ने सर्द लहजे में कहा। ईशानी के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। वो रुद्राक्ष की तरफ पलटी और गुस्से में बोली, आप हैं कौन मेरे कैरेक्टर पर अंगुली उठाने वाले, मैं तो आपको जानती तक नहीं, आपने मुझसे जबरदस्ती शादी करके पहले ही अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। रुद्राक्ष ने उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींचा और उसके कान के पास बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, लिमिट तो तुमने क्रॉस की है वाइफी, मुझे चोट पहुंचाकर, मेरी तो वैसे भी कोई हद नहीं है, तुम मुझे जानती नहीं फिर भी सीधे मेरे वीक पॉइंट पर वार किया है। ईशानी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, मैं आपको पहली बार देख रही हूं, आपको कोई गलत फहमी हुई है मिस्टर खुराना, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, आपकी बहन, ईशानी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रुद्राक्ष ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, अगली बार अपनी गंदी जुबान पर मेरी बहन का नाम लेने से पहले अपनी औकात देख लेना, कहते हुए रुद्राक्ष ने ईशानी को बेड पर धकेला। वो उसके ऊपर था और उसके हाथ ईशानी के पूरे जिस्म पर चल रहे थे। वो गुस्से में उसके होठों पर किस कर रहा था, फिर वो उसकी गर्दन पर हार्डली किस करने लगा। ऐसा क्या किया है ईशानी ने जो रुद्राक्ष से इतनी नफरत करता है, जानने के लिए पढ़िए हिज फर्स्ट ब्राइड, मेरी आईडी पर मिल जाएगी नॉवल।